ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. آپ کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کو ایسی چیزوں کی خبر دیتے ہو جو اللہ کو بھی معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے. تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی، تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا. یہ تھی آیت نمبر 18 اور 19، 18 سے 19. اس کا ٹاپک لکھیے، شرک کیا ہے؟ سلیش ڈالے، ظاہری چیزوں میں اٹک جانا. دوسرا ٹاپک لکھیں گے، انسانیت کا آغاز دین فطرت سے ہوا. ہم سمجھتے ہیں شرک کیا ہے کہ کسی قبر پہ جا کے ماتھا ٹیکنا یا کسی بت کے سامنے جا کے اس سے مدد طلب کرنا، حالانکہ اللہ کے ماں سوا کسی چیز کے ساتھ انسان کی توجہ کا، اس کی محبتوں کا پلٹ جانا، ہر چیز کا اس چیز میں لگ جانا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہری چیزوں میں اٹک جانا، مادی سہاروں پہ اتنا یقین ہونا جتنا اللہ پہ نہیں، یہ سب شرک ہے. اور آج کے دور کا تو شرک ہے ہی مادہ پرستی کا شرک ہے. دنیا کی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کی طرف آنے نہیں دیتی. دوسری چیز یہ تھی کہ انسانیت کا آغاز دین فطرت سے ہوا. آج بچوں کے ایولیوشن کے نام پہ جو دین پڑھایا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ انسان شرک سے اٹھا، ٹھوکریں کھاتا کھاتا توحید پہ آیا. اور یہود وہ لوگ تھے جنہوں نے پہلی دفعہ لوگوں کو توحید سکھائی. یہ مسلمان ملکوں کی کتابوں میں پڑھائی ہوئی باتیں ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو بالکل مختلف بات کہتے ہیں. اور وہ کیا کہ اصل بات کیا ہے کہ انسانیت کی بنیاد توحید پہ تھی، بعد میں لوگوں نے اس کو شرک میں بنا دیا. اصل ایک ہوتا ہے، بعد میں اس سے جب لوگ ڈیویٹ ہوتے ہیں تو دوسری طرف چل پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا میں ہی لوگوں کی سوچ کو سیدھا کر دے، لیکن یہ دنیا آزادی کی ہے، امتحان کی ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو اس چیز کی طرف ضرور مائل کر دے گا جس سے وہ آج دنیا میں رکے ہوئے ہیں. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی. سو آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے، سو تم بھی منتظر رہو، میں بھی منتظر ہوں. اور جب ہم لوگوں کو اس امر کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں، تو وہ فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ چال چلنے میں تم سے بہت زیادہ تیز ہے، بال یقین ہمارے فرشتے تمہاری چالوں کو لکھ رہے ہیں. آیت نمبر 20 سے 21، اس کا عنوان لکھیے، سرکشی کرتے ہو تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا. وہی مضمون ہے جو پیچھے بھی گزر چکا کہ نعمتوں میں انسان کا رویہ بے نیازی کا، اور مصیبتوں میں اللہ کی طرف آنے کا رویہ. لیکن سرکشی کے باوجود بہت مال مل جائے، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس گناہ کو نوٹ نہیں کیا. آج دنیا میں یہ سب لکھا جا رہا ہے، کل اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور موت کے فرشتے کو دیکھتے ہی لوگ چلا اٹھتے ہیں کہ کاش ہمیں ایک موقع اور ملے اور ہم جو کرتے تھے وہ نہ کریں. هو الذي يسيركم في البر والبحر، وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں، اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں، اور ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ برے آ گھرے. اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہم کو اس سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائے. پھر جب اللہ ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں نا حق سرکشی کرنے لگتے ہیں. اے لوگو، یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے. دنیا کی زندگی کے یہ چند فائدے ہیں، پھر تم کو ہماری طرف آنا ہے، پھر ہم سب تمہارا کیا دھرا تم کو دکھا دیں گے. آیت نمبر 22 سے 23، 22 سے 23، اس کا عنوان یہی ہے جس کو آپ ہائی لائٹ بھی کریں گے. آیت نمبر 23 میں، انما بغیکم علی انفسکم، یہی اس کا ٹاپک ہے، تمہاری سرکشی تم پہ ہی پڑنے والی ہے. آج دنیا میں کوئی غلط کام کریں اور اس کے بدلے میں کوئی عذاب یا تکلیف نہ آئے، تو انسان کو انتظار کرنا چاہیے اس دن کا کہ جب وہ اپنی اس سرکشیوں کے بدلے کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں سمجھانا چاہتا ہے، لیکن بات کیا ہے کہ انسان سمجھنا نہیں چاہتا، دنیا کی طرف پلٹتا ہے. ایسے شخص کو پھر اللہ تعالیٰ دنیا کی حقیقت بتاتے ہیں. کیا؟ انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلی، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس इसके मालिकों ने ये समझ लिया कि अब हम इस पर बिल्कुल काबिज हो चुके हैं, तो दिन में या रात में इस पर हमारी तरफ से कोई हुक्म अजाब आ पड़ा, सो हमने इसको ऐसा साफ कर दिया गोया कल वो मौजूद ही ना थे। और हम इसी तरह आयात को साफ साफ बयान करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो सोचते हैं। ये थी आयत नंबर 24। इसका अनवान लिखिए, दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है। ये वही आयतें हैं जिस पे एक लेक्चर भी है, लाइफ इज अ फेडिंग शेडो, आप उससे फायदा उठा सकते हैं। आगे भी ये टॉपिक आएगा इंशाल्लाह, इसकी तफसीलात हम वहां देखेंगे, बहुत जगह ये बात आएगी। वल्लाहु यदु इला दारिस सलाम, और अल्लाह ताला सलामती के घर की तरफ तुमको बुलाता है, और जिसको चाहता है राह रास्त पर चलने की तौफीक देता है। जिन लोगों ने नेकी की उनके वास्ते खूबी है और इससे बढ़कर भी, और इनके चेहरों पर ना स्याही छाएगी और ना जिल्लत, ये लोग जन्नत में रहने वाले हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। और जिन लोगों ने बुरे काम किए इनकी बदी की सजा इसके बराबर मिलेगी, और इनको जिल्लत छाएगी, और इनको अल्लाह से कोई बचा न सकेगा, गोया कि इनके चेहरों पर अंधेरी रात के परत लपेट दिए गए, ये लोग दोजख में रहने वाले हैं और उसमें हमेशा रहेंगे। आयत नंबर 25 से 27, 25-27, इसका उन्वान लिखिए, इस दुनिया में खो के न रह जाओ, अल्लाह तुमको सलामती के घर की तरफ बुलाता है। बड़ी खूबसूरत आयतें हैं। जन्नत को दारुस्सलाम कहा क्योंकि वहां के लोग सलामत होंगे, दुख से सलामत, गम से सलामत, बीमारी से सलामत, औलाद के गमों से सलामत, घरेलू जिंदगी की उलझनों से सलामत। यहाँ दुनिया में कोई खुशी मिल भी जाए तो साथ ही अंदेशा है, छिन ना जाए। नेमत ना मिले तो ना मिले ये गम है, मिल जाए तो कोई खुशी थोड़ी मिलती है, साथ ही गम होता है कि ये चीज अब छिन ना जाए। जन्नत मिलेगी तो साथ ही साथ मौत को जन्नत और जहन्नम के बीच में एक दुम्बे की शक्ल में ज़िबह कर दिया जाएगा, और एक आवाज लगेगी कि आज के बाद किसी को मौत नहीं। ये है सलामती। दुनिया में नेमते भी हो ना तो खौफ आता है, हाय मर ना जाए, हाय छिन ना जाए। कहा वहां तुम्हें पहले ही बता दिया कि हुम फीहा खालिदून, तुम उसमें हमेशा रहोगे। दुनिया में जिसने खुशी पाई रब को नाराज करके, वो तो अपना हिस्सा बरत चुका। जिसने अपनी खुशियों को खुदा रुखा कर लिया, अल्लाह ताला ऐसे वफादार बंदों को जन्नत में वो खुशियां देगा जो नहीं छिनेंगी। और वही असल जन्नत है जिसको अल्लाह ने यहाँ बात की कि ये वो चीज है कि जो इंसान को उसके अमाल की वजह से मिलेगा, और वहां अल्लाह के चेहरे का दीदार मिलेगा। यहाँ ये हिस्सा जो है वज़ियादतुन, ये अल्लाह के चेहरे के दीदार की बात है, जिस पे पीछे भी सुनाया था आपको कि अल्लाह ताला जन्नतियों को जमा करके फिर उनसे पूछेगा कि बताओ तुम खुश हो, वो कहेंगे हाँ खुश हैं, फिर अल्लाह ताला आखिर में अपने चेहरे का दीदार करवाएगा। और अल्लाह का दीदार, अल्लाह के चेहरे का दीदार लोगों को इतना प्यारा लगेगा कि उसके मुकाबले में जन्नत की बाकी चीजें उनको हकीर लगेंगी। अल्लाह अकबर, आज दुनिया की बेबसी कोई बेबसी नहीं, नाकामी कोई नाकामी नहीं, ये खत्म हो जाएगी। लेकिन कल वो लोग जिन्होंने दुनिया को अपनी मर्जी से गुजारा, उनके चेहरे अंधेरी रात की तरह स्याह हो जाएंगे। काला तव्वा तसव्वुर में आते हैं आयतों को पढ़ते हुए, अंधेरों के अंधेरे, मायूसियों के, जिंदगी जाया करने के अंधेरे, डिप्रेशन के अंधेरे। क्या किया, दुनिया में कोई काम कर लें तो आप थक जाएं, लेकिन आपके चेहरे पे फ्रेशनेस होती है उस काम को करने के साथ से। कोई काम ना कर सके तो गम होता है महरूमियों का, यही वो चीज है जिसका यहाँ तस्करा है। वह यौमन अक्षरुहुम जमीया, और वो दिन भी काबिले जिक्र है जिस रोज हम इन सबको जमा करेंगे। फिर मुशरिकीन से कहेंगे कि तुम और तुम्हारे शरीक अपनी जगह ठहरो, फिर हम इनके आपस में फूट डाल देंगे, और इनके वो शुरका कहेंगे कि तुम हमारी इबादत नहीं करते थे, सो हमारे तुम्हारे दरमियान अल्लाह काफी है गवाह के तौर पर, हमको तुम्हारी इबादत की खबर भी न थी। हुनालिका तबलू कुल्लु नफ्सिन, इस मुकाम पर हर शख्स अपने अगले किए हुए कामों की जाँच कर लेगा, और ये लोग अल्लाह की तरफ से जो इनका मालिक हकीकी है लौटाए जाएंगे, और जो कुछ झूठ बांधा करते थे सब इनसे गायब हो जाएगा। आयत नंबर 28 से 30, इनका उनवान है, जिनकी उम्मीद थी वही धोखा दे गए। वो लोग जो दुनिया में अल्लाह के सिवा गैरों को सहारा बनाए फिरते हैं, उनका कल क्यामत के दिन यही हाल होगा। आज अल्लाह के नाम पे एक दूसरे को दीन से दूर करने वाले, बहकाने वाले लोग कल क्यामत के दिन उनके बीच में फूट पड़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने लोगों को असल चीज से दूर किया। कुल मैं यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, आप कहिए कि वो कौन है जो तुमको आसमान और जमीन से रिस्क पहुंचाता है, या वो कौन है जो कानों और आंखों पर पूरा इख्तियार रखता है, और वो कौन है जो जिंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिंदा से निकालता है, और वो कौन है जो कामों की तदबीर करता है। जरूर वो यही कहेंगे कि अल्लाह। तो इनसे कहिए कि फिर क्यों नहीं डरते। फजालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक, सो ये है अल्लाह ताला जो तुम्हारा रब्बे हकीकी है। फिर हक के बाद और क्या रह गया है बजुज गुमराही के, फिर कहाँ फेरे जाते हो। इसी तरह आपके रब की ये बात कि वो ईमान न लाएंगे तमाम फासिक लोगों के हक में साबित हो चुकी है। ये थी आयत नंबर 31 से 33। इसका उनवान लिखिए, कितनी अजीब बात है कि रब को नहीं मानते। सरासर तौहीद को उजागर करने वाली आयतें थीं कि वो लोग जो दुनिया में अल्लाह ताला की नेमतों को पाते हैं, आंखों से देखते हैं कि आसमान से बारिश होती है, आंखें कान उसने दिए, इसके बावजूद उधर नहीं जाते तो वो हक से दूर होते हैं। दूसरा टॉपिक लिखिए इन आयतों का, बल्कि हाईलाइट करेंगे आप, आयत नंबर 32 के अंदर है, फमा ज़बादल हक की इल्लत दलाल, बस हक के बाद गुमराही के सिवा और क्या है। हकीकत यह कि जब इंसान एक सीधा रास्ता छोड़ता है तो उसके बाद फिर कितने ही गलत रास्ते उसके सामने खुल जाते हैं। मतलब आप कहीं जा रहे हैं, सीधी रोड से आप एक दफा गलत टर्न ले लें, फिर आप जिधर मर्जी जाएं, ईस्ट में जाएं, नॉर्थ में जाएं, साउथ में जाएं, बिल्कुल यही बात है कि जब बंदा अल्लाह की मर्जी को अपनी जिंदगी से निकाल देता है तो फिर बहुत सारे लोग उसको अपनी मर्जी पे चलाना चाहते हैं, और ऐसा शख्स फिर भटकने के सिवा और कोई काम नहीं करता। कुल हल मिन शुरकाइकुम मन यब्दउल खल्क सुम्मा युईदु, आप कहिए क्या तुम्हारे शुरका में कोई ऐसा है जो पहली बार भी पैदा करे फिर दोबारा भी पैदा करे। आप कह दीजिए कि अल्लाह ही पहली बार पैदा करता है फिर वही दोबारा भी पैदा करेगा, फिर तुम कहाँ से फिर आए जाते हो। आप कहिए कि तुम्हारे शुरका में कोई ऐसा है कि हक का रास्ता बताता हो। आप कहिए कि अल्लाह ही हक का रास्ता बताता है, तो क्या फिर वो शख्स जो हक का रास्ता बताता हो वो ज्यादा इत्तबा के लायक है, या वो शख्स जिसको बगैर बताए खुद ही रास्ता न सूझे। बस तुमको क्या हो गया है, तुम कैसे फैसले करते हो, और इनमें से अक्सर लोग सिर्फ गुमान पर चल रहे हैं। यकीनन गुमान हक की मार्फत में कुछ भी काम नहीं दे सकता। ये जो कुछ कर रहे हैं यकीनन अल्लाह को सब खबर है। आयत नंबर 34 से 36, इनका उनवान है, शिर्क की बुनियाद मफरूजे। मफरूजा क्या होता है? एजम्पशंस, सिर्फ एज्यूम करना। जहां भी शिर्क फैलता है वहां अमूमन उन हस्तियों के साथ कुछ ना कुछ मफरूजे होते हैं। इन्होंने आसमान को थामा हुआ है, इनकी वजह से दरिया का पानी रुका हुआ है, अगर इनको हटा दिया जाए तो सारे शहर में पानी आ जाए। ये हमारे बुजुर्ग ये तो कभी सोए नहीं। सच है, ऐसी कहानी आपने सुनी हुई है कि लोगों ने ऐसी कहावतें रखी हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो हक को पाना चाहता है वो अल्लाह की तरफ पहुंचेगा, और जो सिर्फ मफरूजों पे और एजम्पशंस पे अपनी बुनियाद रखेगा वो शिर्क की किसी न किसी किस्म में जरूर खो जाएगा। वमा कान हाज़ल कुरआन व युफ्तरा मिन दूनिल्लाह, और ये कुरान ऐसा नहीं कि अल्लाह की वही के बगैर अपने ही पास से घड़ लिया हो, बल्कि ये तो इन किताबों की तस्दीक करने वाला है जो इससे कबल नाजिल हो चुकी थी, और किताब की तफसील बयान करने वाला है। इसमें कोई शक नहीं कि रब्बुल आलमीन की तरफ से है। क्या ये लोग यूं कहते हैं कि आपने इसको घड़ लिया है? आप कह दीजिए कि तो फिर तुम इसके मिसल एक ही सूरत लाओ, और जिन जिन गैर अल्लाह को बुला सको बुला लो अगर तुम सच्चे हो। बल्कि ऐसी चीज की तकजीब करने लगे जिसको अपने हाथ इल्मी में नहीं लाए, और न ही इनको इसका आखिरी नतीजा मिला है। जो लोग इनसे पहले हुए इसी तरह उन्होंने भी झुटलाया था, सो देख लीजिए इन जालिमों का क्या अंजाम हुआ। आयत नंबर 37 से 39, इनका उनवान है, अगर तुम कर सको तो इस कलाम जैसी कोई चीज बना लो। पिछले दौर में कुरान पाक सिर्फ लफ्जों का एक मजमुआ दिखता था। अरब लोग अपने अदब के ऊपर बड़ा मान करते थे। अल्लाह ताला ने कहा, जाओ इस कुरान पाक के लफ्जों पे गौर कर लो और देख लो कि तुम्हें ये मिल सकता है कि नहीं। और इसका सौती हुसन था, खूबसूरती थी, मेलोडियस था, रिदमिक आयते थी। अरब वाले इसके बराबर का एक कलाम नहीं बना सके। जैसे हीरा पकड़े तो शुरू में उसकी चमक दिखती है ना, इसी तरह कुरान का पहले लफ्जी हुसन दिखता है। लेकिन हर आने वाले दौर में कुरान पाक की कुछ ऐसी चीजें सामने आती जा रही हैं कि जिसको उस दौर के लोगों के लिए चैलेंज बना के पेश कर दिया गया। बस अगर सिर्फ आप कुरान और साइंस को जोड़ के देख लें तो आपको बहुत सारे हकायक जो कुरान पाक में मौजूद है वो साइंस की जुबान से सच होते हुए हुए दिखेंगे। ज्योग्राफी को देख लें, जियोलॉजी को पढ़ लें, तो ये चीजें इस वक्त हम सब के लिए एक दलील है कि दुनिया में कुरान से हट के कोई भी सिस्टम बनाना चाहा तो वो चला नहीं। क्यों नहीं चला? क्योंकि कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, और वो लोग जो इस कुरान को अलग करके दुनिया की चीजों को अलग करते हैं तो दरअसल वो ऐसे ही हैं कि जैसे किसी के कॉल और फेल को अलग कर देना। तो लिहाजा ये चैलेंज आज भी मौजूद है, 1400 साल गुजरने के बावजूद भी। وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ। इनमें से बाज ऐसे हैं जो इस पर ईमान ले आएंगे और बाज ऐसे हैं कि इस पर ईमान नहीं लाएंगे, और आपका रब मुफसिदों को खूब जानता है। और अगर आपको झुठलाते रहें तो ये कह दीजिए कि मेरे लिए मेरा अमल और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल, तुम मेरे अमल से बरी हो और मैं तुम्हारे अमल से बरी हूँ। और इनमें से बाज ऐसे हैं जो आपकी तरफ कान लगाते हैं, क्या आप बहरों को सुनाते हैं गो इनको समझ ना भी हो? और इनमें से बास तो ऐसे हैं कि वो आपको देख रहे हैं, तो क्या आप अंधों को रास्ता दिखाना चाहते हैं गो इनको कोई बसीरत भी ना हो? ये यकीनी बात है कि अल्लाह लोगों पर कुछ जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग खुद अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। आयत नंबर 40 से 44, इनका उन्वान है जितनी तलब उतना दीन। अल्लाह के नबी सल्लम के पास आने वाले हर शख्स को आपके कलाम से हिस्सा नहीं मिलता था। हर बंदा अपनी तलब के मुताबिक चीज लेता है। जिसको हिदायत की तलब होती है उसको इस कलाम से हिदायत मिलती है, और जो इस कलाम से चीजें लेकर दूसरों को इस्लाम का कॉन्ट्राडिक्शन दिखाएगा तो उसको इसके अंदर से कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा। तो बात यह है कि कलाम तो हिदायत वाला है, लेकिन जब तक लोग इसको नहीं लेना चाहेंगे उनको नहीं मिलेगा। وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ। और इनको वो दिन याद दिलाइए जिसमें अल्लाह इनको अपने हुजूर जमा करेगा, तो इनको ऐसा महसूस होगा कि गोया वो दुनिया में सारे दिन की एक आध घड़ी रहे हों। सोचिए जरा, पूरी जिंदगी ऐसा लगेगा, आधा दिन सुबह से अभी तक आधा दिन तो हो गया ना, ये पूरी दुनिया की जिंदगी हमें वहां लगेगी। और आपस में एक दूसरे को पहचानने को ठहरे हों, यानी बस पहचान हुई और जाने का वक्त आ गया। वाकई खसारे में पड़े वो लोग जिन्होंने अल्लाह के पास जाने को छुटलाया और वो हिदायत पाने वाले न थे। और जिसका हम इनसे वादा कर रहे हैं, इनमें से थोड़ा अगर हम आपको दिखला दें या इनके जहूर से पहले हम आपको वफात दे दें, सो हमारे पास तो इनको आना ही है, फिर अल्लाह ताला इनके सब अफाल पर गवाह है। वलिकुल्ली उम्मत रसूल, और हर उम्मत के लिए एक रसूल है। सो जब इनका वो रसूल आ चुकता है, इनका फैसला इंसाफ के साथ किया जाता है और इन पर जुल्म नहीं किया जाता। ये है आयत नंबर 45 से 47। इसका उन्वान लिखिए आखरत अजनबी दुनिया नहीं होगी। वो लोग जो दुनिया में यूमिनून बिल आखिरा करेंगे ना, क्यामत के दिन उनको कोई चीज नई नहीं लगेगी, बिल्कुल स्ट्रेंज नहीं होगा, क्योंकि उनका यकीन इतना पुख्ता था कि गोया के वो खुली आंखों से देख रहे हैं। इसके बरक्स वो लोग जो इस दुनिया के धोखों में जिए, जिन्होंने आखिरत को पीछे ही डाल दिया, सोचा ही नहीं उसको, उनका हाल क्या होगा कि वो हैरान परेशान सटपटाए हुए खड़े होंगे। कभी आप किसी नई जगह जाएं तो आप इसका तजुर्बा कर सकते हैं। हमने कहीं भी जाना होता है तो हम तसव्वुर में सोचते हैं ये ऐसी होगी। आजकल इंटरनेट है, जगह मौजूद है, आप एज्यूम करते हैं अच्छा नियाग्रा फॉल ऐसी होगी, ये होगा वो होगा, कोई भी चीज सोचें, और जब आप वहां जाते हैं तो वाकई थोड़ी बहुत फर्क होती है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज मिलती है। लेकिन वो शख्स जो बेफिक्रा हो, उसको होश ही ना, उसको समझ ही ना हो कि मैंने वहां जाना है, वो तो वहां जाके हो सकता है कि परेशान हो कि मुझे मुड़ना किधर है। वो लोग जो इस दुनिया में रह के आखिरत पे निगाहें लगाते हैं, आखिरत के बारे में सोचते हैं, जिनके लिए आखिरत एक ऐसी हकीकत होती है कि जिसको अपनी आंखों से देखें, तो कल वहां जाएंगे तो इंशाल्लाह उनको वहां बिल्कुल भी हैरत नहीं होगी। लेकिन इसके बरक्स वो लोग जो दुनिया में उस आखिरत को पीछे डाल के जी रहे हैं, कहीं इतने घबराए हुए ना हो कि उनको बिल्कुल होश ना हो कि हमने जाना किधर है। وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ। और वो कहते हैं कि ये वादा कब पूरा होगा? अगर तुम सच्चे हो, आप फरमा दीजिए कि अपनी जात के लिए तो किसी नफे और किसी जरर का इख्तियार रखता ही नहीं, मगर जितना अल्लाह को मंजूर हो। हर उम्मत के लिए एक मुअय्यन वक्त है, जब इनका वो मुअय्यन वक्त आ पहुंचता है तो एक घड़ी न पीछे हट सकते हैं और न आगे सिरक सकते हैं। आप फरमा दीजिए कि ये तो बताओ, अगर तुम पर अल्लाह का अजाब रात को आ पड़े या दिन को, तो अजाब में कौन सी ऐसी चीज है कि मुजरिम लोग इसको जल्दी मांग रहे हैं? क्या फिर जब वो आ ही पड़ेगा, क्या फिर ईमान लाओगे? हाँ आप माना, हालांकि तुम इसकी जल्दी मचाया करते थे। फिर जालिमों से कह दिया जाएगा कि हमेशा का अजाब चखो, तुमको तो तुम्हारे ही किए का बदला मिलेगा। आयत नंबर 48 से 52, इसका उन्वान है क्या जब अजाब आएगा तब मानोगे। आयत नंबर 51 का हिस्सा हाईलाइट कर सकते हैं आप। अथुम इजा मा वक़ा आमनतुम बिही, ये हिसाब बाज़ दफ़ा इनफिरादी नौयत का होता है, बाज़ दफ़ा इज्तमाई नौयत का। बाज़ दफ़ा इंसान पे कोई मुश्किल आती है तो उसको उस वक़्त अल्लाह ताला की ज़ात की हकीकत समझ में आती है और इस दुनिया का बेसबात होना समझ में आता है। तो लिहाजा इंसान की ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि उस अजाब के आने से पहले अपने आप को अल्लाह के हाथों में दे दे ताकि अल्लाह की ज़ात उसको कबूल कर ले। वयस्तंबिऊनका अहक्कु हुवा, ये आपसे सवाल करते हैं क्या अजाब वाकई सच है? आप फरमा दीजिए हाँ कसम है मेरे रब की वो वाकई सच है और तुम किसी तरह अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। वलौ अन्न लिकुल्लि नफ्सिन ज़लमत मा फिल अर्दि लफ्तदत बिही, और अगर हर चांद जिसने जुल्म यानी शिर्क किया इसके पास इतना ही हो कि सारी जमीन भर जाए तब भी वो इसको देख कर अपनी जान बचाने लगे, और जब अजाब को देखेंगे तो पेशेमानी को पोशीदा रखेंगे, और इनका फैसला इंसाफ के साथ होगा और इन पर जुल्म ना होगा। याद रखो कि जितनी चीजें आसमानों में और जमीन में है सब अल्लाह ही की मिल्क है। याद रखो कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन बहुत से आदमी इल्म नहीं रखते। वही जान डालता है, वही जान निकालता है, तुम सब इसी के पास लाए जाओगे। ये थी आयत नंबर 53 से 56। इसका उनवान है आखरत का मसला सौदेबाजी का मसला नहीं। वो लोग जो दुनिया में अपना माल और अपनी जान रब के हाथों में नहीं बेचते ना, कल कयामत के दिन सौदा करेंगे। अल्लाह ताला बताइए क्या डील हो सकती है? कुछ ले दे के काम चल सकता है? क्या देना चाहते हो? अगर सारी जमीन और उसके ऊपर की जो चीजें हैं ये सोने की बन जाएं तो क्या वो मुझे दे के आज के अजाबों से बचोगे? हाँ अल्लाह ताला। अल्लाह ताला कहेंगे तुम झूठ बोलते हो, मैंने तो तुमसे इससे बहुत थोड़ा मांगा था और वो ये था कि मेरे साथ शिर्क ना करो। तो लिहाजा सौदेबाजी आज है कल नहीं। दुनिया में भी आप देखिए डील का एक वक्त होता है, फिर उसके बाद तो सिर्फ डिलीवरीज होती हैं। डिलीवरी के वक्त कोई कहे कि आप डील कर लो, वो कहेंगे नहीं सॉरी, दूसरे बिड जीत चुके, दूसरों ने जो लेना था वो ले चुके, तुम महरूम रह गए।